श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 15वां अध्याय भगवान के साम्राज्य का वर्णन श्लोक संख्या 3। देवा ऊचुहु तम एतद् विभो वेत्थ संविघ्नायद्वयं भृशम् न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भाग्यशाली देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा, इस अंधकार को देखिए जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं और जो हमारी चिंताओं का कारण बन रहा है। काल का प्रभाव आपको स्पर्श नहीं कर सकता, अतएव आपके लिए कुछ अव्यक्त नहीं है। तात्पर्य, ब्रह्मा यहां विभु और भगवान कहकर संबोधित किए गए हैं। वे संसार में रजगुण के अवतार हैं। प्रतिनिधित्व की दृष्टि से वे भगवान से अभिन्न हैं और इसलिए काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता। काल का प्रभाव जो भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में व्यक्त होता है, वह ब्रह्मा और अन्य देवताओं जैसे उच्चतर व्यक्तियों को स्पर्श नहीं कर सकता। कभी कभी देवता और महर्षि जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, त्रिकालज्ञ कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहां वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से दिति के गर्भ में जो दो बच्चे थे, उनका प्रभाव किस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में फैल गया। जब दिति को पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, और जिस समय उसे संतान की उत्पत्ति करने की इच्छा हुई वो सही समय नहीं था, और अपने पति कश्यप मुनि की बात नहीं मानी, तो ये बहुत अशुभ बात हो गई, क्योंकि वो घड़ी भी अशुभ थी। संसार में जब हम कोई कार्य करते हैं तो शुभ और अशुभ घड़ी की हमें चिंता करनी पड़ती है। भगवान की भक्ति में तो शुभ और अशुभ घड़ी की बात नहीं होती है, लेकिन संसार में तो इन चीजों के बारे में सोचना आवश्यक रहता है। क्योंकि यह अशुभ घड़ी पे हुआ जब शिवजी और उनके पार्षद आकाश में भ्रमण कर रहे होते हैं, इसलिए उनके गर्भ में दो बड़े बड़े असुरों ने जन्म लिया। और पहले श्लोक में से अध्याय में 15वें अध्याय में बताया जाता है कि क्योंकि दिति को पता चला कि उसके गर्भ में दो असुर पैदा होने वाले हैं जो बहुत उत्पात पैदा करेंगे सारे ब्रह्मांड में, इसलिए उन्होंने दो बच्चों को 100 साल तक जन्म नहीं दिया, अपने गर्भ में धारण करके रखा, क्योंकि वो चाहती थी कि जितना देर तक मैं इस मुसीबत को टाल सकूं मैं टालने का प्रयास करूंगी। जो होना था वो तो होना ही था, लेकिन फिर भी दिति सोच रही थी कि मेरे पुत्रों का जन्म होगा और सारे ब्रह्मांड में सबके लिए कष्ट, सबको कष्ट देने वाले हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने ही गर्भ में बच्चों को बाहर नहीं आने दिया, वहीं पर रख दिया 100 साल तक, और उसके बाद में जन्म हुआ। लेकिन जिस दौरान ये बच्चे मां के गर्भ में थे, तो उस समय भी ऐसी घटनाएं होने लगी सारे ब्रह्मांड में कि सारे देवतागण भी बड़े चिंतित हो गए। यहां अध्याय में वर्णन किया जाता है कि चंद्रमा और सूरज की जो रोशनी है वो भी ढक गई, सारे ब्रह्मांड में एक अंधकार सा फैल गया। क्यों? केवल ये दो बच्चों की वजह से। कल्पना कीजिए, दो बच्चे मां के गर्भ में हैं और इतना इतना प्रभाव उनका है कि मां के गर्भ में रहते हुए भी उनके अंदर यह शक्ति है कि सारे ब्रह्मांड में वो अंधकार फैला सकते हैं। तो पिछले श्लोक में यह बताया गया था कि किस प्रकार से ये अंधकार को देखकर लोकपाल जो देवता हैं सारे चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए दौड़ते हुए। देवतागण जब किसी कष्ट में पड़ जाते हैं तो देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो दोनों मिलकर विष्णु के पास जाते हैं। जैसे हमारे संसार में भी देखते हैं, कहीं भी तकलीफ होती है तो हमसे ऊपर जो है उनके पास जाते हैं, वो समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो उनसे ऊपर जो है उनके पास जाते हैं। तो इस प्रकार से आखिरी में, सबसे आखिर में वो विष्णु के पास जाते हैं। तो यहां देवतागण बड़े चिंतित हो गए कि ये क्या बात है, सब जगह अंधकार है, सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं आ रही है, क्या हो रहा है। तो ये जब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, और ये उत्तर क्या दिया ये हम अगले बार देखेंगे। लेकिन यहां बातचीत चल रही है देवताओं की, और देवतागण कह रहे हैं कि क्या वजह है कि अंधकार इतना हो गया है, और ब्रह्मा जी तो सब चीज जानते थे। ब्रह्मा जी त्रिकालज्ञ कहलाते हैं, अर्थात जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानते हैं, क्योंकि उनकी उनका पद इतना ऊंचा है इसलिए उनको यहां विभु या भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साक्षात भगवान है, लेकिन क्योंकि भगवान ने उनके अंदर ऐसी विशेष शक्ति प्रदान की है इसलिए उनको कभी कभी विभु या भगवान कहा जाता है। खुद ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, भास्वान यथाश्म शकलेश निजेश तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदंड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सुंदर दृष्टांत देते हैं स्वयं ब्रह्मा जी, कहते हैं कि जिस प्रकार से सूरज की रोशनी किसी मणि में प्रकट होती है, और सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब जो है या वही शक्ति एक मणि से प्रकट होती है अंश में, वास्तव में मणि की कोई शक्ति नहीं है, सूरज के रोशनी का प्रतिबिंब वो केवल प्रकट करा सकते हैं मणियां जो होती हैं। उसी प्रकार से जो देवता गण होते हैं जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनकी कोई स्वयं की शक्ति नहीं होती है, उनकी जो भी शक्ति होती है वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अनेक जो देवतागण हैं उनके अंदर ये अलग अलग प्रकार से शक्ति प्रदान कर देते हैं, जिस प्रकार से सूरज अलग अलग मणियों में रोशनी प्रकट करा देते हैं उनके माध्यम से, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अलग अलग देवताओं के भीतर ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, और यही शक्ति उनके माध्यम से ब्रह्मांड में प्रकट होती है, और इस तरह से ब्रह्मांड का पालन पोषण होता है। वास्तव में यह शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, केवल देवताओं के माध्यम से प्रकट होता है, इतना ही अंतर है। लेकिन क्योंकि वो उनके वो माध्यम बने हैं भगवान की शक्ति के लिए, भगवान के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनको विभु या भगवान कहा जाता है। पिछले श्लोक में हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से सारे ग्रह जो है अंधकार में पड़ गए, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में हर एक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य होता है। आजकल जो मतवाद है वैज्ञानिकों का कि हर एक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हैं, ये श्रीमद् भागवत के दृष्टि से गलत ठहराता है। शास्त्र में बताया जाता है कि हर एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, और जो अन्य नक्षत्र वगैरह हैं वो केवल सूर्य के प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब वो उनका स्वयं उनकी स्वयं की रोशनी नहीं होती है। यहां तक कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, कि नक्षत्रों में से मैं शशि हूं, शशि अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा भी नक्षत्रों में से प्रमुख माना जाता है। तो ये सारे नक्षत्र और ग्रह जो हैं ब्रह्मांड में वो सारे सूर्य के ऊपर निर्भर हैं। सूर्य उनको रोशनी और उष्णता देती है, जिसकी वजह से हर एक ग्रह में प्राणी जी सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो कहते हैं कि जो सूर्य है ये भगवान के नेत्रों के समान है। चंद्रमा और सूर्य ये दो भगवान के आंख माने जाते हैं, और उनमें से प्रमुख है सूर्य। यह चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम राजा, सारे ग्रहों में से ये प्रमुख माना जाता है सूर्य। सकल ग्रहाणाम राजा, सारे ग्रहों का राजा। अशेष तेजा, इसमें जो तेज है प्राय अशेष है, अंत नहीं होता। दूसरे शब्दों में बहुत शक्तिमान है ये सूरज, और अनादिकाल से सूरज जो है ये रोशनी देते आ रहा है, और अनंत काल तक देता रहेगा। जब तक ये ब्रह्मांड नाश नहीं होगा तब तक सूरज ब्रह्मांड को चलाता रहेगा। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, कि भगवान के आदेश के अनुसार ये सूरज और ग्रह जो हैं और नक्षत्र भी हैं अपने अपने चक्र में चल रहे हैं, और सूरज के चक्र को कहते हैं काल चक्रो। तो ये काल चक्र में सूरज चल रहा है, और क्योंकि सूरज इस प्रकार से काल चक्र में चल रहा है इसलिए हम देखते हैं कि हमारे दिन होते हैं रात होते हैं, और दिन में भी हम 24 घंटे मानते हैं, विभाजन करते हैं, फिर मिनट होते हैं सेकंड होते हैं। इस प्रकार ये सारी चीजें जो है सूरज के काल चक्र में भ्रमण करने के वजह से होता है। हर एक ग्रह और नक्षत्र का अपना अपना चक्र रहता है ये ब्रह्मांड में, और हर एक जो भी वस्तु ब्रह्मांड में है वो चक्र में चलती रहती है। और कैसे चलते हैं या क्यों चलते हैं, यस्य आज्ञाय, भगवान श्री कृष्ण या गोविंद के आज्ञा के अनुसार हर एक ग्रह और नक्षत्र अपने अपने चक्र में चल रहा है। वैज्ञानिकों का मतभेद और है, वो कहते हैं उन्होंने और कोई बातें बताई हैं कि अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से सारे ग्रह अपने जगह चक्र में चलते हैं। लेकिन इनका कारण क्या है, ये जो ग्रहों को अपने जगह में रखने वाले जो नियम है, इन नियमों को बनाया किसने है? जब नियम होते हैं तो नियम को बनाने वाला और नियम का रखवाला भी कोई होना चाहिए। जब हम ये शहर में भी देखते हैं कि रास्ते पे लाल बत्ती होता है और फिर हरी बत्ती इत्यादि, तो कोई यहां रखने वाले भी तो कोई होते हैं, और फिर ये भी देखने के लिए लोग होते हैं कि आप लाल बत्ती होते हुए गाड़ी चलाकर चले जाते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से ये ग्रह जो चल रहे हैं नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन ये नियम बनाए किसने और नियम बनाए रखता कौन है, और अगर नियम का पालन कोई नहीं करता तो दंड कौन देता है? ये है भगवान। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो। ये सारे जो ग्रह हैं और नक्षत्र हैं, सारे अपने अपने चक्र में चल रहे हैं केवल भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार। उपनिषदों में यह भी बताया गया है भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्माद् अग्निः चंद्रश्च मृत्यु धावते पंचमः। कि ये संसार में सब कुछ भगवान के भय से चल रहा है। अगर हवा चल रही है तो क्यों? भीषास्माद्, भगवान के भय से हवा चल रही है। और अग्नि उष्णता क्यों दे रही है? क्यों? भगवान के भय से। चंद्रमा रोशनी क्यों दे रही है? भगवान के भय से। और सूर्य क्यों अपने चक्र में चल रहा है और रोशनी दे रही है सब जगह? भगवान के भय से। मृत्यु धावती पंचमः, मृत्यु भागते भागते सबका पीछा कर रही है। पंचमः, पंचमः मतलब हमारे शरीर के भीतर पांच प्रकार के प्राण वायु हैं, और ये प्राण वायु की वजह से हमारे अंदर आत्मा, ये शरीर के अंदर आत्मा रहती है। जब प्राण चले जाते, पांच प्रकार के प्राण चले जाते हैं शरीर से, तो आत्मा को साथ में लेकर चले जाते हैं। उस समय कहते हैं कि व्यक्ति का देहांत हो गया। तो पंचमह मतलब ये पांच प्राण, अर्थात जब तक प्राण रहता है। तो मृत्यु धावती पंचमह, तो मृत्यु दौड़ते दौड़ते हमेशा सबका पीछा कर रही है और उनसे पांच प्राण शरीर से निकालती है। लेकिन मृत्यु ऐसे पीछा क्यों करती है हर एक व्यक्ति का? भगवान के भय से। तो इस प्रकार से उपनिषदों में बताया जाता है कि ब्रह्मांड केवल भगवान के भय से चल रहा है। देखिए, संसार में भय की आवश्यकता है। भय नहीं होगा तो सब, हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य करने लगेगा। जब लोग सरकार से डरना बंद करते हैं तो क्या होता है राज्य में? जंगल का राज बन जाता है। तो देखते हैं कि सरकार के लिए ये जरूरी है कि थोड़े हद तक प्रजा में भय जागृत करे। क्योंकि हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो सरकार के नियमों का पालन करेंगे, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के नियमों का पालन जानबूझकर तोड़ना चाहेंगे और केवल मौका देखेंगे कि कब हम तोड़ पाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भयभीत रखने के लिए दंड दिए जाते हैं, जैसे मृत्यु दंड इत्यादि। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये तथाकथित आधुनिक विचारों की वजह से ये मृत्यु दंड वगैरह बंद किए गए हैं। लोग सोचते हैं कि हमें उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ये नहीं जानते कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने किसी का खून किया है, उसको मृत्यु दंड मिलना आवश्यक है। क्योंकि मृत्यु दंड से ही उसके पाप जो है वो मिट जाएंगे। अगर मृत्यु दंड उसको नहीं मिलेगा और अगर सरकार उसको क्षमा कर देगी, तो ये जो पाप के भयंकर फल हैं, उसको इस जीवन में भी भुगतने पड़ेंगे और इसके बाद में भी जो जीवन आने वाले हैं उनमें भी भुगतना पड़ेगा। नरक में जाना होगा और बहुत वहां पछताना पड़ेगा, बहुत दुख वहां सहन करना पड़ेगा। और जिस सरकार ने उसे दंड नहीं दिया है सही तरह से शास्त्रों के अनुसार, ये कर्मों का फल शास्त्र ये सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सरकार को चाहिए कि वो सख्त बने और दंड दे सही प्रकार से। हम देखते हैं कि भागवत में जो बड़े बड़े ऋषि, राज ऋषि हुए हैं, जैसे महाराज परीक्षित खुद गली गली शहर शहर में घूमते फिरते थे अपने तलवार लेकर, कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर दंड, अगर नियमों का पालन नहीं करे, धर्म का पालन नहीं करे, तो स्वयं दंड देने के लिए वो तैयार रहते थे। ऐसा नहीं कि केवल पुलिस को आगे रखते थे, पीछे अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठते थे, नहीं, खुद आगे जाकर दंड देने के लिए तैयार होते थे। तो भय ये बहुत आवश्यक चीज है हमारे भौतिक संसार में। ये संसार में भी हम देखते हैं लोग पाप करने के लिए डरते हैं। क्यों? पाप करेंगे तो कोई पापों का फल मिलेगा, है ना। तो क्योंकि कोई ना कोई परिणाम मिलता है, दुखद परिणाम मिलता है, इसे लोग पाप करने से डरते हैं। हाँ, आजकल के जमाने में लोग इतने गिरे हुए हैं कि पाप से भी नहीं डरते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि ये पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई वजह से डरते हैं। जैसे एड्स की बीमारी है, एड्स की बीमारी आ गई कि सब लोग अब डर गए, अब जो पाप पहले करते थे बहुत सारा कम हो गया, क्योंकि पाप करेंगे वैसे तो फिर एड्स की बीमारी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब तक ये भय नहीं रहेगा तब तक ये संसार में कुछ काम होगा नहीं। किसी दफ्तर में भी जाकर देखिए, जब तक कोई ऊपर से दंड देने वाले, कुछ डांटने वाले नहीं रहेंगे, जब तक कोई भय नहीं रहेगा, कोई भी दफ्तर में काम नहीं करेगा, है ना। सही बात है। इसलिए बड़े ये बात जो है देवताओं तक भी होती है। देवतागण भी अपना अपना काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि भगवान आकर दंड देने के लिए तैयार होते हैं कि चलो अपने अपने लोक को लेकर चलो, चक्र में चलते रहो। तो सारे लोग चलते रहते हैं अपने अपने चक्र में। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान के भय से चल रहा है। और ये सारे जो लोक हैं उनके लोकपाल होते हैं, देवता होते हैं, जिनके अध्यक्षता में ये लोक चल रहे हैं। और जब ये आकाश में हम तारे वगैरह नक्षत्र देखते हैं या ये ग्रह देखते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये खुद ब खुद चल रहे हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से चल रहे हैं ये भी भगवान बताते हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि अगर आप समुन्द्र के किनारे में जाएंगे और जो रेती है अपने मुट्ठी में ले लेंगे और फिर उस रेती को आप ऊपर हवा में फेंक दीजिए, तो क्या होगा, रेती का क्या हो जाएगा, रेती के सारे जो कण हैं वो इतर तितर हो जाएंगे। तो लेकिन जब वो रेती जो है अपने मुट्ठी में रहती है तो क्या होता है, वो सारे कण जो है वैसे के वैसे रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारे ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, ये सब अपने अपने जगह में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के विश्व रूप के मुट्ठी में रहते हैं। भगवान के मुट्ठी ने उनको पकड़ा हुआ है, इसलिए तो वो सब रहते हैं, नहीं तो सब इतर तितर हो जाते, कोई लोक इधर कोई ग्रह उधर। लेकिन हर एक ग्रह हर एक नक्षत्र अपने अपने चक्र में चल रहा है, क्योंकि भगवान की मुट्ठी में है। प्रभुपाद जी और समझाते हैं कि जब तक आत्मा शरीर में है आदमी तैर सकता है ना, नदी में समंदर में। लेकिन जब आत्मा शरीर से चले जाता है तो उस समय क्या होता है, आदमी तुरंत डूब जाता है। तो तैरने की जो शक्ति है वो आत्मा में है, आत्मा शरीर को प्रदान करती है। और जब आत्मा शरीर को त्याग देता है तो तुरंत शरीर डूब जाता है। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर से शरीर ऊपर चले आता है सड़कर, लेकिन आत्मा जब छोड़ देता है शरीर को तो तुरंत उस समय डूब जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, गाम आविश्य च भूतानाम धार्याम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। वो कहते हैं कि गाम आविश्य च भूतानाम, मैं प्रवेश करता हूं हर एक ग्रह के भीतर, और प्रवेश करके मैं क्या करता हूं, धार्यामि अहम ओजसा, हर एक ग्रह को मैं धारण करता हूं मेरे ओजस शक्ति के द्वारा। तो ग्रह जो अपने अपने चक्र में चल रहे हैं वो भगवान के ओजस शक्ति से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस यूं ही चल रहे हैं, बाय चांस चल रहे हैं जैसे वैज्ञानिक कहते हैं। बाय चांस कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने इन ग्रहों में प्रवेश किया है और प्रवेश करने के पश्चात इनको धारण किया हुआ है, इसलिए सारे जो ग्रह और नक्षत्र हैं अपने अपने चक्र में चल रहे हैं। और आगे कृष्ण बताते हैं पुष्णामी, वो कहते हैं चौषधि सर्वाह सोम भूतवार सात्मक, कि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा का एक विशेष गुण यह होता है कि अपनी रोशनी से वो वनस्पतियों में वो शक्ति प्रदान करती है, औषधि जो पालन पोषण की शक्ति होती है और जो वनस्पति में, वो चंद्रमा की रोशनी से आता है। आजकल लोग ज्यादा फर्टिलाइजर खेत वो केमिकल वगैरह डालते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जो वनस्पति वगैरह में शक्ति आती है वो चंद्रमा की रोशनी से आती है। और ये कैसे होता है आजकल के वैज्ञानिक इसको समझ नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार से सारे ग्रह जो नक्षत्र हैं उनका प्रभाव वो हमारे ऊपर आता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये सारे चीजें, सारी व्यवस्था जो है, ये सब भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि से, उनके शक्ति से सब चल रहा है ब्रह्मांड में। तो इसलिए हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सारे ब्रह्मांड का असर हमारे ऊपर होता है, उसी प्रकार हम भी ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसका असर सारे ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। यहां इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जब मां के गर्भ में भी थे, उनका प्रभाव कैसे सारे ब्रह्मांड में फैल गया, ये कोई इतनी आश्चर्य की बात नहीं है। एक व्यक्ति भी ऐसे सारे ब्रह्मांड के ऊपर प्रभाव डाल सकता है अपनी शक्ति से, जैसे ध्रुव महाराज की कथा है। ध्रुव महाराज की कथा आपने शायद सुनी होगी। जब ध्रुव महाराज अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोदी में बैठने गए, तो उस समय जो राजा उत्तानपाद की दूसरी रानी थी सुरुचि, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा बेटा उत्तम यहां बैठा है और उसी अकेले का अधिकार है यहां राजगद्दी पे बैठना। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता राजा के गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तो उस समय ध्रुव केवल 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन ध्रुव महाराज को इतना बुरा लगा क्योंकि क्षत्रिय खून उनके अंदर था, वो तुरंत अपने पिता के गोदी से नीचे उतरे और रोते रोते अपने मां के पास गए। मां ने कहा कि मैं भी तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं कर सकती हूं, केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता जो है तुम्हारी दूसरी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वो उसी की बात मानेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन भगवान की जो भगवान है वो आपके सारे इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। तो अपने मां के से अनुमति लेकर ध्रुव महाराज वन में तपस्या करने चले गए और वहां पर ध्रुव महाराज की परीक्षा नारद मुनि ने ली और उन्होंने कहा कि तुम तो बालक हो, तुम्हें क्यों करना है ये सब तपस्या, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम तो केवल 5 साल के बालक हो और 5 साल के बालक को तो खेलना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कितने सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको प्रवचन में बैठने बोलिए तो नहीं बैठ पाएंगे, खेलने बोलिए तो खेलेंगे, क्योंकि तपस्या करना ही उनका उम्र नहीं है ये। तो नारद मुनि कहते थे 5 साल ये तपस्या की आयु नहीं है, इसे जाके खेल कूद करो जाओ, ये क्या तपस्या वन में तप करने आए हो। लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा हम आपको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन आपको अगर हमारे तपस्या में सहायता नहीं करना है तो कृपा करके रास्ते से हट जाइए। अगर आपको मुझे आशीर्वाद देना है कि मैं मेरी तपस्या में सफल रहूंगा तो फिर मैं आपकी शरण में हूं, नहीं तो कृपा करके साइड में हो जाइए। तो नारद जी परीक्षा ले रहे थे तो प्रसन्न हुए उनकी दृढ़ता देखकर, दृढ़ विश्वास देखकर, और नारद जी ने उनको मंत्र दिया और ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या आरंभ की और ध्रुव महाराज ने बहुत भयंकर तपस्या की। इसके पहले नारद जी राजा उत्तानपाद के पास में गए और राजा बड़े शोक में मग्न थे, इतना अच्छा भक्त है पांच वर्ष का भक्त है, मासूम बच्चा है, उसको मैंने गोदी से हटा दिया और वो वन में चला गया। मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मेरा हृदय कितना कठोर है, और न जाने बच्चे को क्या होता होगा वन में। हो इतने सारे शेर वगैरह, सारे सब पशु वगैरह हैं, सांप हैं, अभी जीवित है या नहीं है, पता नहीं कौन सी अवस्था में जी रहा है। तो बड़े शोक में थे। तो नारद जी ने जाके कहा कि हे राजन, चिंता नहीं करो, आपका पुत्र जो है बड़ा विशेष पुत्र है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में सुखी है वन में, उसके बारे में चिंता नहीं कीजिए, भगवान उसका देखभाल कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आपका जो बालक है वो ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जो कि बड़े बड़े राजा और ऋषि भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसे सब तपस्या करने के पश्चात वो घर लौट आएगा आपके पास। तो बिल्कुल चिंता से मुक्त रहिए। और उधर वन में ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, और ऐसी तपस्या जिसकी चिंता, जिसकी कल्पना हम इस कलयुग में कर ही नहीं सकते। पांच साल के बालक, लेकिन पहले महीने में वो क्या कर रहे थे, हर तीसरे दिन थोड़ा बहुत जो भी फल फूल मिलते थे वो खा लिया करते थे, तीन दिन में एक बार। पहले महीने में जब एक महीना समाप्त हो गया, दूसरे महीने की शुरुआत हो गई, तो क्या करते थे, हर छठे दिन थोड़े सूखे पत्ते जो होते थे, जो गिरे हुए होते थे जमीन पर, वो एक बार छह दिन में खा लिया करते थे। इस प्रकार से दूसरा महीना बीत गया, और उस समय दो महीने में बैठकर भगवान के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे, जैसे नारद जी ने उनको उपदेश दिया था। और जब तीसरा महीना आया, तो तीसरे महीने में हर नौ दिन में एक बार वो जल पिया करते थे, खाना बंद कर दिया, अब केवल एक बार जल पीना। ये सारे चीजें सुनकर ही मन चकरा जाता है। एक दिन का उपवास, एक दिन के उपवास की बात करते हैं तो हमारा मन चकरा जाता है, लेकिन ध्रुव महाराज नौ दिन में एक बार थोड़ा सा जल पी लिया करते थे। फिर चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, और बारह दिन में एक बार सांस लेते थे। तो हवा सांस भी लेते थे वो, लेकिन वो भी बारह दिन में एक बार। और इस प्रकार से चौथा महीना बीत गया, और उनका ध्यान भगवान के ऊपर और भी तीव्रता से केंद्रित होते जा रहा था, और हृदय बहुत शुद्ध होते जा रहा था, और अंदर से उनको बड़े आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब पांचवा महीना आया, अपने सांस पद्धति पे के ऊपर इतना उनका संयम था कि सांस लेना ही बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने, और एक पैर पे खड़े होकर भगवान के ऊपर अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित कर दिया, और ऐसे खड़े थे बिना हिले, जैसे एक खंबा जैसे होता है वैसे खड़े रहे। और पांच महीने जब ऐसे बीत गए, तो तीनों जो लोक हैं, सारा ब्रह्मांड जो है वो कांपने लगा, थरथराने लगा, सारे लोक जो है थरथराने लगे। और ध्रुव महाराज जहां खड़े थे एक पैर के ऊपर, उनके पैर के जोर में से आधी पृथ्वी जो है नीचे चली गई। और भागवत में बताया जाता है कि जिस प्रकार से कभी कोई हाथी अगर नौके में चले जाए, तो हाथी के पैर इधर उधर करने से कैसे नौका इधर उधर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ध्रुव महाराज के एक पैर के खड़े होने से पृथ्वी इधर उधर होने लगी, आधी पृथ्वी जो है नीचे चली गई। और क्योंकि ध्रुव महाराज ने सांस लेना बंद कर लिया था, इसलिए सारे ब्रह्मांड में हवा उन्होंने खींच लिया था, और ऊपर के लोकों में देवतागण भी सांस नहीं ले पा रहे थे, इतने भयंकर तपस्या। अब आप में से जिनको आस्थमा की बीमारी है आप जानते हैं, जब सांस नहीं ले सकते तो कितनी तकलीफ होती है। अब सोचिए कि मान लीजिए कि ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवताओं की बहुत आस्थमा का अटैक आ गया, सांस नहीं ले पा रहे थे सब लोग, बड़े बड़े देवी देवता, क्या हो गया है, हवा कहाँ है, क्या हो गया? तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो सब लोग गए विष्णु जी के पास में। सुर और असुर में यही अंतर होता है। देवतागण जब कोई तकलीफ होती है तो भगवान के शरण में जाते हैं, लेकिन असुर लोग, उनको कोई तकलीफ होती है तो वो कुछ और पाप करने बैठ जाते हैं। तो विष्णु ने कहा कि चिंता नहीं करो, ये सब हुआ है राजा उत्तानपाद के पुत्र के तपस्या की वजह से। तो मैं अभी ध्रुव के पास में जाता हूं और उसे शांत कर देता हूं, चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में भगवान ध्रुव के पास में गए और ध्रुव को आशीर्वाद दिया और ध्रुव ने अपनी तपस्या बंद कर दी। तो इससे हम देख सकते हैं कि एक भी व्यक्ति की का प्रभाव इतना हो सकता है कि सारे ब्रह्मांड को वो तकलीफ में डाल सकता है, सारे ब्रह्मांड का सांस खींच सकता है। लेकिन आजकल कलयुग में हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है, ये योग्यता नहीं है। ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति या अपनी योग शक्ति के माध्यम से वो ये कर पाए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो योगी होते हैं कभी कभी कोई असाधारण शक्ति प्रदान कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कहीं से सोना निकालना या कहीं से कोई सेब चले आना इत्यादि। लेकिन ये तो विशेष को इतने कोई विशेष या अद्भुत कार्य नहीं है जैसे ध्रुव महाराज ने दिखलाया। प्रभुपाद कहते हैं कि जब भक्त को भगवान शक्ति दे देते हैं तो वो ऐसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं, ऐसे अद्भुत कार्य संपन्न कर सकते हैं जिनके सामने ये जो योगी छोटे मोटे सिद्धियां जो प्रदर्शित करते हैं, ये सिद्धियां तो बिल्कुल मिट्टी के बराबर हो जाती हैं, अर्थात कुछ भी नहीं। जैसे ध्रुव महाराज ने अपने भक्ति के शक्ति के माध्यम से सारे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया। और याद रखिएगा कि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे, कोई बड़े योगी नहीं थे, योगी तो बन गए वो आखिर, लेकिन केवल 5 साल के बालक। लेकिन ये भक्ति के माध्यम से। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति का चमत्कार यही है कि एक आदमी भी शुद्ध भक्त बन जाए तो वो अपने अद्भुत कार्यों से सबको वो आश्चर्यचकित करा सकता है सारे ब्रह्मांड में। और खुद हम ये प्रभुपाद जी के जीवन से भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने, और वो भी 70 से 80 साल की उम्र में, 10-12 साल में एक व्यक्ति ने सारे विश्व भर में कितना परिवर्तन कर दिया। 10-12 साल में उन्होंने 108 बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की, इतने हजारों लोगों का हृदय बदल दिया। जैसे वो कहते थे, उन्होंने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, जो पहले हर प्रकार का नशा करते थे और इतने दुख की अवस्था में थे उनको संत बना दिया। ये करना बहुत मुश्किल है। इमारत बनाना ठीक है, लेकिन लोगों का हृदय बनाना और उनको ऐसे प्रेरित करना कि भगवान की सेवा के लिए वो सारे पापों को छोड़कर अपना जीवन अर्पण कर दें, और वो भी ऐसे ऐसे लोगों को, म्लेच्छ यवन चंडाल लोगों को भी उन्होंने ऐसे परिवर्तित कर दिया, ये था प्रभाव उनका। और उनके प्रभाव की वजह से आज संसार में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां भगवत गीता और भागवत इन पुस्तकों का वितरण नहीं हुआ होगा। शायद ही ऐसे कोई देश होगा संसार में जहां लोगों ने कृष्ण और राम का नाम नहीं सुना होगा। हर एक देश में आप देखेंगे, हर एक देश में कोई ना कोई भक्त है, चाहे वो अरब देश में हो, कम्युनिस्ट देश में हो, चीन में भी हो, अरेबिया में भी हो। थोड़े लोग छुप छुप कर प्रचार कर रहे हैं तो थोड़े लोग खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति प्रभुपाद की वजह से देखिए कितना परिवर्तन हो गया एक सारे विश्व भर में। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो खुद कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने चाहा कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी यश मिलेगा, मैं चाहता हूं कि मेरे अनुयायियों को मिले, मेरे भक्तों को मिले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य जो है अपने भक्तों के लिए सौंप दिया। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की कि एक दिन ऐसा आएगा जब मायापुर नवद्वीप में जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका से अलग अलग देशों से भक्त आएंगे और जय सचिनंदन गौर हरि ये कीर्तन, इसकी वाणी गूंजेगी मायापुर नवद्वीप में, और वाकई ये सत्य निकला है। अगर भक्ति विनोद ठाकुर को भगवान ही शक्ति देते तो वो भी कर पाते। भक्ति विनोद ठाकुर में वो शुद्धता क्षमता थी, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक समझा कि मेरे बाद में जो आएंगे उनको हम वो यश देंगे, और आखिर प्रभुपाद जी के हाथ में आया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, कई ऐसे देश भी हैं जहां और भी प्रचार आवश्यक है। तो भगवान अगर चाहते तो प्रभुपाद जी के माध्यम से सारे विश्व भर में हर एक व्यक्ति को भक्त बना सकते, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनके बाद में जो आने वाले हैं उनके लिए भी तो कुछ काम छोड़ना चाहिए। अगर सब कुछ वो कर बैठेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा है हम सब के लिए उन्होंने कार्य अधूरा छोड़ रखा है, तो हमें भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। भगवान को किसी एक व्यक्ति में शक्ति प्रदान करके उस व्यक्ति के माध्यम से सारे विश्व भर को कृष्ण भक्त बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सवाल केवल ये है क्या हमारे अंदर वो पात्रता है, क्या वो शुद्धता है, क्या वो तीव्र इच्छा है जिससे कि हम भगवान के इस असीम कृपा और शक्ति का पात्र बने। इसलिए हमारे सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम भी इसी भक्ति ये पद्धति है इसको इतना अच्छी तरह से इसका पालन करें कि भगवान हमारे अंदर वही शक्ति प्रदान करें जिससे सारा जो ब्रह्मांड है वो आश्चर्यचकित रह जाए कि देखो ये कृष्ण भक्त क्या अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और जब लोग ऐसे कृष्ण भक्त को कार्य करते हुए भी देखेंगे तो वो भक्ति में आगे प्रगति करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के भक्त उनके भीतर जब अद्भुत शक्ति आ जाती है तो ऐसे वो कार्य कर सकते हैं जैसे ध्रुव महाराज ने किया। लेकिन आप पूछेंगे कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तो भक्त नहीं थे, बड़े असुर थे, तो उनके अंदर ये कैसे इतनी अद्भुत शक्ति आ गई कि गमा के गर्भ में होते हुए भी सारे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया। देखिए शक्ति अगर असुर में हो या सुर में हो, शक्ति का उगम स्थान केवल भगवान श्री कृष्ण है। कभी कभी भगवान अपनी योजना से, अपनी स्वेच्छा से, अपने ही कोई कार्य को संपन्न करने के लिए असुरों को भी शक्ति प्रदान कर देते हैं। जिस प्रकार से कभी कभी किसी वन में केवल हवा के वजह से, कोई वृक्ष इत्यादि का स्पर्श की वजह से अग्नि हो जाती है और सारे वन में आग लग जाती है और सारे वृक्ष खत्म हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से कभी कभी भगवान असुरों को भी बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। क्यों? ताकि असुर एक दूसरों को मार सके, खत्म कर सके, ताकि दुनिया में शांति आ सके। क्योंकि भक्तों के लिए और बहुत जरूरी काम है। अगर वो असुरों से मारपीट करने लगे हैं तो असली काम है वो नहीं कर पाएंगे। असली काम क्या है? कृष्ण कथा सुनना और बोलना और भगवान का नाम का कीर्तन करना और सुनना। अभी भजन कीर्तन इतने जरूरी काम पड़े हैं, वहां मारपीट के लिए किसे समय है? लेकिन आजकल लोग ज्यादा मारपीट में लगे हैं और वो भजन कीर्तन में कम समय देते हैं। लोग समझते हैं कि दुनिया का संघर्ष करना ही सबसे जरूरी चीज है और भजन कीर्तन जो है वो ठीक है समय मिले तो। कई बार लोगों से कहते हैं कि हम जब कहते हैं कि भाई साहब आप आइए भजन कीर्तन में आइए, मंदिर में आइए, भाई दुनिया का संघर्ष इतना है, भागदौड़ इतना करना पड़ता है कि समय नहीं मिलता है। अर्थात संसार से मारपीट करने में इतने उलझे हुए हैं कि कि जो वास्तव में जो जरूरी काम है उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अगर चाहते तो निकाल पाते, लेकिन इच्छा नहीं है। सोचते हैं कि संसार में, संसार से हमारा माथा जो है उसको बार बार धक्का करना संसार से, वो हमारा सबसे बड़ा कार्य है। संघर्ष करेंगे संसार से, भाग नहीं जाएंगे संसार से। भागने की बात नहीं है, क्यों खामखा क्यों संघर्ष करना है संसार से। जितना शरीर और आत्मा को साथ में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उतना काम हमें संसार में करना चाहिए। ज्यादा और हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय भजन कीर्तन में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का कार्य है। इसी कार्य से तो हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो भगवान कभी कभी असुरों को भी ऐसे अद्भुत शक्ति देते हैं। जैसे आजकल भी संसार में देखिए, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े जो यंत्र हो रहे हैं, ये तकनीकी ज्ञान हो रहा है, बड़े बड़े एटम बॉम्ब बंदूक वगैरह हो रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? सब संसार के असुर ही सब बना रहे हैं, ताकि एक दूसरे को खत्म कर सके, एक दूसरे को मारपीट करके एक दूसरे को खत्म करें और भक्त लोग फिर शांति से अपना भजन कर सके। और दूसरा कारण ये है कि जो असुर अपनी बुद्धि लगाकर जो चीज बनाते हैं, उनका उपयोग भक्त लेकर भगवान की सेवा में प्रयोग करें। जैसे उन्होंने बहुत कठिनाई से इलेक्ट्रिक विज्ञान वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे माइक्रोफोन है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आप लोग ये सब करते रहिए और हम इनको लेकर भगवान की सेवा में प्रयोग करेंगे। तो भक्तों का यही काम होता है, भजन कीर्तन करना। तकनीकी ज्ञान हो न हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भजन कीर्तन का काम चलता रहेगा। लेकिन अगर तकनीकी ज्ञान मिले तो क्यों ना इसका प्रयोग करें भगवान की सेवा में। इसलिए गाड़ी, एरोप्लेन, पैसा सब कुछ भक्त लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की वाणी के प्रचार के लिए। तो इसलिए कभी कभी भगवान भी असुरों को ऐसे विशेष शक्ति प्रदान करते हैं जिससे सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाता है कि अरे वाह, देखो क्या बढ़िया कार्य किया इसने, है तो असुर लेकिन फिर भी अद्भुत कार्य कर रहा है। क्यों? भगवान की कोई योजना है, अपने कर्म के अनुसार उसे ये पात्रता मिली है कि थोड़ी बहुत शक्ति मिले, लेकिन ऐसे शक्ति से वो भगवान के करीब नहीं पहुंच सकता, इसके विपरीत भगवान से और भी दूर चले जाएगा। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं, उनको ये संसार की शक्ति से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने भजन कीर्तन में खुश रहते हैं। खुश रहना चाहिए, भक्तों को समझना चाहिए कि इससे ज्यादा हमारे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति में आने के बाद भी कभी कभी ये हमारे एक टेम्पटेशन रहता है कि हम अन्य काम ज्यादा करें, भजन कीर्तन कम करें, इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। जिस दिन हम भूल जाएंगे कि हमारे भक्ति की बुनियाद, भक्ति का आधार वो भजन कीर्तन है, उस दिन हमारे भक्ति से धीरे धीरे जो है वो आकर्षण चले जाएगा, कम होते जाएगा। इसलिए ये जो हमारा भक्ति का सार है भजन कीर्तन, वैसे वैष्णव के संग में आकर भजन कीर्तन करना, ये इस सार को अगर हम भूल जाएंगे, इससे अगर ध्यान कम करेंगे तो हमारे भक्ति में भी उत्साह और आकर्षण कम हो जाएगा। तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को इतनी विशेष शक्ति प्रदान की कि माँ के गर्भ में रहते हुए भी उन्होंने सारे ब्रह्मांड में अंधकार फैला दिया, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वास्तव में भगवान के धाम के द्वारपाल हैं, जय और विजय। और भगवान ने जब ये चाहा कि मुझे ये संसार में आकर वीर रस का आस्वादन करना है, तो उन्होंने जय और विजय को यहां भेजा संसार में, ताकि भगवान यहां अवतार ले सकें, उनसे युद्ध कर सकें, अपने वीर रस का आस्वादन कर सकें और फिर ऐसी लीला यहां प्रदर्शित करें जिनका जिनका जो भजन जो जिनका श्रवण कीर्तन है हम करोड़ों करोड़ों साल बाद में भी हम कर सकें। अगर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म नहीं हुआ होता तो आज क्या हम नरसिंह देव के बारे में बात करते, आज क्या हम प्रहलाद के बारे में बात करते। तो इस प्रकार से भगवान जब ऐसे असुरों को भी शक्ति देते हैं तो इसके पीछे भी उनका कोई विशेष कारण होता है। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो इसलिए इन चीजों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमें केवल ये प्रार्थना करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम हमारी भक्ति में आगे बढ़ें। भक्ति में बढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमें भगवान के भक्तों के संग में आना चाहिए। भक्तों का संग कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना भक्तों का संग हम छोड़ेंगे उतना ही हम भगवान श्री कृष्ण से भी दूर होते जाएंगे। तो हमेशा भक्तों से मित्रता बनाए रखनी चाहिए, भक्तों में प्रेम से रहना चाहिए, हमारे भौतिकता को दूर रखना चाहिए, कम से कम भक्तों के संग में। तो और ज्यादा से ज्यादा हमें इस भजन कीर्तन में रुचि लेने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी के? ब्रह्मांड में जो नक्षत्र हैं वो किस फॉर्म में हैं? किस चीज से बने हुए हैं नक्षत्र? भगवान बताते हैं ना, भूमिराप नलवयुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये सारा ब्रह्मांड जो है आठ पदार्थों से बना हुआ है। तो ये आठ पदार्थ अलग अलग कॉम्बिनेशन में रहते हैं और अलग अलग चीज बनाते हैं। ये नक्षत्र ग्रह वगैरह हैं, ये सब इन महाभूतों से बने हुए हैं। जैसे पृथ्वी लोक में हम पृथ्वी जल अग्नि भी देखते हैं, लेकिन पृथ्वी जल ज्यादा मात्रा में है, लेकिन सूर्य लोक में अग्नि ये ज्यादा मात्रा में है। तो अलग अलग ग्रह, अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग मात्रा में ये अलग अलग महाभूत रहते हैं, पदार्थ रहते हैं, लेकिन है बने हुए आठ चीजों से। नहीं नहीं, देवतागण जो लोकपाल हैं वो उन ग्रहों को चलाने वाले अधिष्ठाता देव हैं। ऐसा नहीं है कि वो ग्रह ही देव हैं, लेकिन ग्रह को चलाने वाले जैसे इंद्रदेव या चंद्रदेव हैं, सोम, वो देखते हैं कि जो सोम का जो ग्रह है, नक्षत्र है, वो अपने चक्र में चलता है, वो चलाने वाले हैं, प्रेसिडेंट हैं वो वहां के। हर एक ग्रह का कोई देखभाल करने वाला रहता है। जैसे सूर्य देव को कहते हैं विवस्वान, लेकिन सूर्य में भगवान भी निवास करते हैं, सूर्य नारायण के रूप में। जो गायत्री मंत्र बोलते हैं लोग वो सूर्य नारायण को संबोधित करते हैं, लेकिन सूर्य नारायण के अलावा भी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है विवस्वान, सूर्यदेव। तो ऐसे हर एक ग्रह को चलाने वाले अधिष्ठाता देव होते हैं, देवता लोकपाल, और इनको विशेष शक्ति दी गई होती है। जैसे प्रवचन के शुरू में ही हमने कहा कि विशेष, जैसे एक सूरज मणियों में अपने प्रकाश जो है प्रदान करता है, उसी प्रकार से भगवान किसी विशेष देवताओं में ये शक्ति प्रदान करते हैं ग्रहों का पालन करने के लिए, ये देखने के लिए कि ग्रह अपने अपने चक्र में चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा।